सूरत बकरा। चंद बातें सूरत को समझने से पहले हम देखेंगे। सूरत बकरा तरतीब के एतबार से कुरान पाक में दूसरे नंबर की सूरत है, तवील तरीन सूरत है। इस सूरत के बारे में नबी सल्लम ने फरमाया कि बातिल परस्त लोग इसकी ताब नहीं लाते, यानी सूरत बकरा और सूरत आल इमरान जिस जगह पढ़ी जाए वहाँ जादू टूने का असर भी नहीं होता। और इसी तरह से अगर किसी को खुद से ही कुछ ऐसी नकाहत और कमज़ोरी महसूस होती हो तो उसको सूरत बकरा पढ़नी चाहिए। पूरी सूरत भी बहुत खूबसूरत है, आखिरी आयतें इसकी बहुत प्यारी हैं, अर्श के ख़जानों में से उतरी थी। सूरत की तरतीब को थोड़ा सा देखिएगा कि मुसफ में हमारे सामने ये सूरत आई, लेकिन ये मदनी सूरत है और मदनी सूरत से मुराद ये है कि कुरान पाक का तकरीबन 2/3 नाजिल हो चुका था। मदनी सूरतों में ये शुरू की सूरत है, बिल्कुल हिजरत मदीना के बाद की सूरत है। माशरे में तीन किस्म के लोग पैदा हो चुके थे, सच्चे मोमिन, सच्चे काफिर और सच्चे पक्के यानी मुनाफिक, कि जो जाहिर से कुछ थे बातिन से कुछ थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में आए तो आपने एक उम्मत बन के लोगों को जीना सिखाया, उस रास्ते में क्या हर्डल्स थी, सूरत बकरा हमें इसमें बहुत अच्छी तरह गाइड करेगी। हमारा थीम उम्मत वसत बनने की तैयारियां, तो लिहाजा हम सूरत बकरा को इस नज़र से पढ़ेंगे कि जब नबी सल्लम ने मदीना में आकर दीन का पैगाम दिया तो आपने क्या मेयर्स लिए, क्या आपने एक्शन प्लान बनाया, कैसे वहाँ पहले से मौजूद लोगों को अल्लाह के नबी ने अपने साथ मिलाया, उनसे वादे लिए ताकि जब भी कभी मुसलमानों को ज़रूरत पड़े तो वो उनकी मदद करेंगे। आज भी मुसलमानों को यही करना होगा, हमें दूसरों को दुश्मन नहीं बनाना। हमने इंसानियत को नफरत नहीं सिखानी, हमने कुछ मुल्कों के नाम के साथ मुर्दाबाद नहीं कहना। हमारी दुश्मनी किसी काफिर से नहीं है, हमने वही काम करना जो अल्लाह के नबी ने किया, और वो कह के इल्म के पानी को आम करके अपने इस्लाम को खूबसूरत करके चलते फिरते मुसलमान बनना है। हमारे नेबर्स, हमारे हमसाए और इसी तरह हमारे खुलीक्स, हमारे बच्चों के दोस्त साथी हमें इतना बामल इंसान देखे, इतना खूबसूरत, इतने साफ सुथरे, इतने ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखने वाले, केयरिंग और खुश अखलाक, ऑर्गेनाइज, कि वो खुद पूछें कि बताइए आपके पास क्या है। तो सूरत बकरा में तकरीबन 1000 हुक्म है। इन अहकामात पे अगर हमारे दिल ने लब्बैक कह दिया और हम इस पे एक एक करके अमल करते जाएंगे तो बात बनेगी। फिर याद रखिए कि हम सब इस वक्त कुरान का फहम ले रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं है, ओनली अंडरस्टैंडिंग है। और फहमे कुरान के लिए जज्बा इनकलाब की ज़रूरत होती है। मुश्किल जुमला बोल दिया मैंने, इनकलाब का जज्बा यानी आई वॉन्ट टू चेंज माई सेल्फ, रेवोल्यूशनरी थाट्स के साथ कुरान समझ आता है। ठंडे ठंडे ऊपर से पढ़ेंगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो लिहाजा कुरान महज नज़रियात और ख्यालात की किताब नहीं है, ये किसी ड्राइंग रूम में बैठ के पढ़ने वाली भी किताब नहीं है, ये किसी लाइब्रेरी या बुक स्टोर में खड़े होकर पढ़ने वाली, आरामदेह चेयर पर पढ़ेंगे समझ नहीं आएगी, ये तफसीरों और डिक्शनरियों से भी समझ नहीं आती, बल्कि ये एक दावत है, एक तहरीक है, एक रेवोल्यूशन है। ये किताब जब समझ आती है तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरह दिल की दुनिया बदल जाती है। सीरत के मैदान में कूदे बगैर इस किताब को अगर पढ़ने लग जाएं तो इंसान मुंह की खाता है। आज जिन लोगों ने इस किताब को अपनी अकल पे परख के पढ़ने की कोशिश की उन्होंने बहुत सारी चोटें खाई। तो लिहाजा आज कुफर और इस्लाम की जो रस्साकशी हमें दिखती है इसके लिए हमें अमली जिंदगी पे इस किताब को लेना पड़ेगा। तो हम इंशाल्लाह जब भी ये पढ़ेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि जो बातें हमारे अमल की हैं उसको हम ज़रूर लेकर चलें ताकि समझ आए। और याद रखिए कि कुरान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दोनों एक दूसरे के शामिल हैं। हमने नबी को नहीं देखा लेकिन कुरान को देख रहे हैं। इस कुरान ने नबी को देखा है, कैसे, लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतन हसना। तो लिहाजा मदनी दौर का आगाज था, या आज मेरे और आपके इस सदी के आगाज की बातें हम करते हैं, अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस्वा हसना समझेंगे, रोल मॉडल बनाएंगे, अपनी जिंदगी में अल्लाह के नबी को लेकर आएंगे तो बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह फ़ायदा भी होगा। और आप देखेंगे कि जितना इसको हम समझेंगे उतना हमारा और समझने को दिल चाहेगा। ये कुरान कोई छोटी चीज़ नहीं है। दुनिया में किसी ने भी कोई किताब लिखी हो तो अमूमन राइटर क्या कहता है, साल में लिखी, दो साल में लिखी, कुछ माह में भी लिखी। हम कहते हैं ये किताब लिखी नहीं गई, ये बोली गई है, बल व कलामुल्लाह। 22 साल 5 महीने बनते हैं, अगर आप कमरी हिसाब से करें तो 23 साल बन जाते हैं। इसमें ये कुरान नाजिल हुआ था, अल्लाह ताला ने इसके नजूल के लिए जिस ज़मीन को चुना वो उस दौर की तमाम सुपर पावर से बिल्कुल आज़ाद था। मैं आज के हालात में अगर आपको समझा दूं तो आज माशाल्लाह दुनिया में कितने मुल्क हैं, कहीं ईस्ट है कहीं वेस्ट है, कहीं आपको वेस्टर्न कंट्रीज दिखते हैं, कहीं मुस्लिम मुल्क, कहीं नॉन मुस्लिम मुल्क दिखते हैं। आज के टेक्स्ट में कह दूं तो कुरान ना तो अमेरिका में नाजिल हुआ, ना यूरोप में नाजिल हुआ, ना ऑस्ट्रेलिया में, ना जर्मनी में, यानी वो बड़े बड़े नाम जो उस दौर के लोगों के जहनों में थे वहां नहीं उतरा, बल्कि कुरान एक छोटी सी कच्ची बस्ती कह लें, सहराई इलाका, पहाड़ी इलाका, अब वो आप किसी भी मुल्क का सोच लें, वहां नाजिल हुआ। क्यों? अल्लाह ताला इसको इर्द गिर्द के जो नजरियात और अफकार थे और जो थॉट्स थी उससे पाक रखना चाहते थे। जिस कौम पे उतरी वो बड़ी साफ दिल पाक दिल कौम थी। अब डिटेल्स का वक्त नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इसको आज के मुसलमान से रिलेट करना चाहूंगी। सीधे साधे लोग थे, और लेकिन इल्म से दूरी ने उनको कहीं डाकू बना दिया, कहीं लुटेरे बना दिया। ऐसे लोग जिनमें हर बुराई आ चुकी थी, जिना, शराब, जुआ, गैम्बलिंग और इस तरह के जितने भी उल्टे पुल्टे नाम आज हम सोच लें, ये सब उस कौम में मौजूद थे। वजह क्या थी? लोग बहुत अच्छे थे लेकिन हिदायत नहीं थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह के बीच में कोई नबी नहीं आया, तकरीबन 2000 साल का अरसा बनता है। तो जब किसी के पास गाइड ना हो तो गाइडेंस कहाँ से मिलेगी? तो आप कह लीजिए कि किताब से दूरी ने अरबों को इतना बुरा बना दिया, लूटते मारते, ना कोई हुकूमत थी ना कुछ, वहां अल्लाह ताला ने ये किताब खुलाई, जालिकल किताब ला रैब फीह, इतने गैर मखसूस तरीके से इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी की आयतों से नज़ूल शुरू हुआ और आखिर में वत्तकू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह, इसी सूरह बकरा में हम पढ़ेंगे वो आयत जो तरतीब नज़ूल से आखिरी आयत बनती है। इस सूरत ने तकरीबन 6666 आयतें बनती हैं कमो बेश है इसमें, लेकिन एक राउंड फिगर यही बनता है। इसने अरबों के दिल की दुनिया तो क्या बदली, उन्होंने उसका मुकद्दर भी बदल दिया। कल तक के लुटेरे और रहजन जिनको कुछ नहीं आता था वो दुनिया के राहबर और इमाम बन गए। चपलियों के बगैर नंगे पांव सहराओं में फिरने वाले, ऊंटों के बाड़ों में रातें बसर करने वाले, कोई असलहा नहीं, कोई मीडिया नहीं, नथिंग एल्स, कुछ नहीं, वो दुनिया के इमाम बन गए। फिर ऐसे दुनिया में छाए कि समझे 1000 साल, 10 सदियां, यानी 1000 ईयर्स तक वो अरब दुनिया के इमाम बने रहे। अल्लामा इकबाल ने भी कहा ना कि आ मैं तुझको बताता हूँ तकदीर उमम क्या है, उम्मतों की तकदीर बदलती है इस किताब से। आज मैं और आप इसको हम कई मुख्तलिफ एंगल से कर सकते हैं, लंबी चौड़ी बातें भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी कतन ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत इस वक्त है कि वो क्या गुण था इस किताब में, वो क्या खूबी थी कि जिसने अरबों को दुनिया के लीडर बना दिया, वर्ल्ड लीडर बन गए। आज हम चाहते हैं वर्ल्ड लीडर बने, कोई मुल्क नहीं चाहता कि वो पीछे रहे, तो उसके लिए ये किताब हम सब के लिए गाइड बुक है। मैंने और आपने इसको आज इसी सोच से पढ़ना है। आज हमारे पास कुछ भी नहीं होगा, मुसलमानों को दुनिया के किसी ऐसे खित्ते में छोड़ दिया जाए जहां दुनियावी की तरक्की का कोई रंग रूप ना हो, और ये किताब उनको दे दी जाए कि पढ़ते जाओ बदलते जाओ, तो आप देखिएगा उस किताब के पूरा होने से पहले वो दुनिया के लीडर बन चुके होंगे। कैसे अल्लाह ने मुसलमानों को गलबा दिया, फिर सियासी गलबा मिला, मुल्कों के मुल्क फतह हो गए, आज 120 के करीब गालिबन मुल्क है मुस्लिम। कैसे बने? किन की कोशिशों से बने? उन्हीं अरबों की कोशिशों से बने जिन पर कुरान नाजिल हुआ। आप और मैं सोच सकते हैं, आप कितने साल हो गए कभी भी कोई नहीं सुना आपने कि कोई नया मुसलमान मुल्क बना, या कोई मुल्क था तो वो इस्लाम में ढल गया। वजह यह कि आज हमने रिलैक्सेशन ली हुई है, आज उम्मत मुस्लिमा छुट्टियां मना रही है, वी आर ऑन वेकेशन। इसका फायदा दूसरों को क्या हो रहा है, वो अपने अफकार फैला रहे हैं, लेकिन इस्लाम जैसी सच्चाई दूर होती है। तो आइए इस सूरत बकरा को शुरू करके इसे गाइडलाइन लेते हैं कि फिर हमने किस तरह से इस पैगाम को आम करना है। जब मैं तर्जमा पढ़ूंगी, आप अपनी कुरान पाक पर पेंसिल या हाथ उंगली के साथ उन्हीं लफ्जों पर फोकस करें, एक ही मफहूम की आयतों को हम इकट्ठा पढ़ेंगे, और इसका असल हुसन तर्जमे को सुनना है। ये जो बीच में मेरी थोड़ी थोड़ी बातें हैं ना, ये तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। आपने कुरान के लफ्जों के साथ खुद को जोड़ना है और इंशाल्लाह इसमें से अपने लिए बातें लेके चलनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी हुदल लिल मुत्तकीन। अलिफ लाम मीम हरूफ मुकत्तात हैं, इनके मानी अल्लाह ताला जानते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं मालूम थे, ये अल्लाह ने रख लिए इसलिए कि तुम जिस किताब को पढ़ने बैठे हो उसके अल्फाज भी तुम अल्लाह की मर्जी के बगैर समझ नहीं सकते, ये अल्लाह की किताब है इसमें कोई शक नहीं। हाईलाइट करेंगे, जो आपको हाईलाइटर दिए गए हैं वो इसी वजह से दिए गए हैं, आपने इंशाल्लाह अपनी मर्जी से करना है। वैसे अगर एक रंग से एक चीज चूज करेंगे तो सारे डूज, इस सिलसिले में हम ये काम भी करेंगे, कि कुरान में जहां आपको उर्दू पढ़ते हुए हुक्म की कोई बात दिखे ना, ये कर लो ये ना करो, उसको आप पिंक कलर से हाईलाइट कर लेंगे। इसी तरह कुछ आपको डोंट्स मिलेंगे, ये नहीं करना, उसको येलो से हाईलाइट कर लीजिए, यानी बीमार किस्म का वो तसव्वुर देगा। और जिस चीज़ों को आप अपने लिए समझते हैं कि शायद मेरी बहुत तवज्जो ली, उसको ग्रीन कलर ले लीजिएगा। बाद में अगर घर जाके आप सारे डूज को अलग लिख लीजिए, डोंट्स को अलग लिखें, आप देखिएगा कि कुरान पाक के पूरा होने तक आपके पास डूज होंगे। और मैं इंतज़ार करूंगी उन स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज का कि जो आज के पारे के डूज एंड डोंट्स भेजेंगे, और हर साल दौरे कुरान में बहुत कुछ आ जाता है आगे, तो शायद इस साल हम डूज एंड डोंट्स को कुरान पाक के पारों की रोशनी में ला सके, क्योंकि उम्मत वसत बन ही नहीं सकते जब तक कि कुरान का ये आखिरी हक आपके सामने लिखें। इंशाल्लाह पूरा महीना आप देखते रहेंगे और इन पांच हकूक को पूरा करने के लिए हम यहाँ बैठे हैं ताकि अल्लाह ताला हमें उम्मत वसत बनाए। तो जब मैं बोलूँगी आप खुद ही समझ आएंगे, कहीं कहीं इशारा कर दूंगी ये डूज में ये डोंट में, लेकिन बाद में आप खुद ही करेंगे। तो फरमाया ये अल्लाह की किताब है, इसमें कोई शक नहीं, दिल को शक से पाक करेंगे तो ये किताब समझ आएगी वरना नहीं। हुदल लिल मुत्तकीन, ये हिदायत है मुत्तकियों के लिए। हिदायत क्या है? बदलने की तड़प। हिदायत और तकवा कामयाबी के अंदर ढलते हैं। इंसान जब हिदायत लेना चाहता है तो उसको मिल जाती है। तकवा क्या है? कि मैं खुद को बदलना चाहती हूँ। मुत्तकी होते कौन है? अल्लज़ीन युमिनून बिलगैब, इन परहेजगार लोगों के लिए जो गैब पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं, जो रिस्क हमने इनको दिया इसमें से खर्च करते हैं, जो किताब तुम पर नाजिल की गई यानी ये कुरान, और जो किताबें तुमसे पहले नाजिल की गई थीं, इन सब पर ईमान लाते हैं और आखरत पर यकीन रखते हैं, ऐसे लोग अपने रब की तरफ से राह रास्त पर हैं और वही फलाह पाने वाले हैं। यहाँ पर रुकते हैं, पांच आयतें। आपको और मुझे कामयाबियों का नुस्खा मिल गया। इस वक्त हमारी कामयाबी क्या है? कि हमने दुनिया को एक अच्छी उम्मत बन के दिखाना है, कामयाब नेशन, मुहज्जब, ऑर्गेनाइज्ड, सिविलाइज्ड, कोई मुकदमा मुसलमानों की अदालतों का नॉन मुस्लिम मुल्कों में फाइल ना हो, कोई मुसलमान चोरी के मुलजिम के तौर पर किसी कोर्ट में ना जाए, कोई घर ना टूटे, कोई डाइवोर्स फाइल ना हो। लोग खुदा के पूछे तुम कौन लोग हो, तो हम कहेंगे मुसलमान वो होता है जो चोरी नहीं करता, मुसलमान वो होता है जिसके घर में बहुत सुकून होता है, मुसलमान वो होता है कि जो किसी का हक नहीं मारता। बता सकते हैं इससे बड़ी कामयाबी और क्या होगी? आज हमें लोगों को ये बन के दिखाना पड़ेगा जो रब हमें बनाना चाहता है। और याद रखिए कि इंसान दुनिया में आया है, जब तक वो किसी मकसद को सामने नहीं रखेगा बात नहीं बनेगी। और हुदल लिल मुत्तकीन में बहुत बड़ा एक सबक है, कुरान सब पढ़ते हैं लेकिन सबको हिदायत नहीं मिलती। हिदायत किसको मिलती है? जो खुद को बदलना चाहता है। और हिदायत पता क्या है? आपकी अम्मी आपको कहती है बेटा मुझे कंप्यूटर सिखा दो, तो ये कंप्यूटर की हिदायत है। आप यहाँ खड़े हैं और आपको किसी मस्जिद में जाना है और आप किसी राह चलते को या नेविगेटर को कहते हैं मुझे उस मस्जिद का रास्ता दे दो, ये गाइडेंस है। बहुत बड़ा लफ्ज़ नहीं है ये। हिदायत क्या है? जिंदगी गुजारने का वो रास्ता जो दुनिया की कामयाबियों से गुजार कर आखरत की कामयाबियों पे ले जाए। आज हम उम्मत वसत के बच्चों को भी देखते हैं तो उनकी भी हिदायत का या कामयाबी का नुक्ता नज़र बहुत महदूद हो गया। बचपन से लेकर तालीम के सारे मराहिल पूरे करिए, गोल क्या है? आई वॉन्ट टू बी डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बी इंजीनियर। बहुत अच्छी बात है, इट्स गुड, लेकिन याद रखिए डॉक्टर बनना अचीवमेंट नहीं है। ये सेंस ऑफ रिलीफ देगा आपको कि यस अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सिक्योर नाउ, इफ आई वॉन्ट टू वर्क आई कैन वर्क, अगर कमाना है इट्स गुड, वेरी गुड। हाँ, इस वजह से डॉक्टर बनना है कि मैं इस्लाम का पैगाम दुनिया तक पहुंचाऊं, मैं लोगों का इलाज करूं, मेरे मरीज मुझसे प्यार करें, फिर मुझसे पूछें कि अच्छा आप कौन है, तो मैं उनको प्यार से फिर अपने दीन का खूबसूरत रंग दिखाऊं। एक्सीलेंट, आप डॉक्टर नहीं बन रहे, आप आलिम बन रहे हैं, शौक से डॉक्टर बनी है, ये तो है बड़ा खूबसूरत नुकता। लेकिन सिर्फ डॉक्टर एज अ प्रोफेशन, सिर्फ फॉर मनी, सिर्फ फॉर प्रेस्टीज मैटर, तो ये कामयाबी नहीं। हम देखते हैं कि दुनिया में कामयाबियों के लिए लोगों ने क्या कुछ पापड़ बेले। अभी मैं इसी ट्रिप में, मुझे अपनी एक दोस्त थी, हमारी साथी थी, पता चला कि उनकी 32 इयर्स की बच्ची का इंतकाल हो गया और बड़ी लंबी चौड़ी डिग्री का नाम लिया गया कि वो ये पढ़ चुकी थी। कितने साल उन्होंने उस डिग्री से फ़ायदा उठाया, जॉब की तो कितने साल की, यंग बच्चे का डेथ होते नहीं कभी सुनी। किसी और भी रिसेंटली सुना कि ग्रेजुएशन से अपनी फारिग होकर कोई जा रहा है और एक्सीडेंट हुआ तो मर गया। ये तो फला नहीं है, उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, दुनिया की हर कामयाबी अधूरी है। तो मुफ्लिह कौन होता है? जिसकी दुनिया भी संवरे और जिसकी आखिरत भी संवरे। और याद रखिए, मुसलमान शॉर्ट साइटेड नहीं होता, वो दुनिया में नहीं खोता, दुनिया को जरूरत के लिए लेता है। लेना है, ये गलती खाई हमने कि नहीं लेना, दुनिया का भी पढ़ना है, बच्चों को स्कूल भी भेजना है, कॉलेज भी भेजना है, यूनिवर्सिटीज भी भेजना है, लेकिन गोल क्या है? क्यों मेरे बच्चे, तुमने दुनिया में इसलिए आगे बढ़ना है कि लोग तुम्हें कामयाब कहें। एक बड़ी खूबसूरत वीडियो थी, एडमिन्स के पास हुई तो भेजिएगा, और वो क्या थी कि एक जगह पे कोई तकरीब है जहां गोल्ड मेडल्स मिल रहे हैं डिफरेंट एंगल पे। एक नाम मुस्लिम, एक बंदे को बुलाया, उसके गले में उन्होंने ब्लू स्ट्रिप वाला एक मेडल डाला। हर डिफरेंट फील्ड्स में दिए जा रहे थे, और आपको पता है कम से कम 10 से 12 मेडल्स में उसी लड़के का नाम है, और उसके गले में इतने वो रोप्स डल गए कि उसकी गर्दन जो झुक रही थी। लेकिन आप उसका पोस्चर देखें, वो कौन था? इतनी लंबी बियर्ड थी, मैं तो रो पड़ी उसको देखकर। और वो दुनिया के मेडल्स मिल रहे थे, क्या लोगों ने उसकी दाढ़ी नहीं देखी? लोगों ने उसका नाम मोहम्मद या अब्दुल्ला नहीं देखा होगा? ये चाहिए मुझे और आपको, ऐसी नस्लें प्रोड्यूस करनी है इंशाल्लाह कि दुनिया में भी मेडल्स लें, और कल अल्लाह भी कह दे कि उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए।